आइडियल व्यक्ति यही है कि जितनी धीरे धीरे इच्छाएं खत्म होती जाए उन्हें करता चला जाए। मान लीजिए कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो आपसे खत्म नहीं होती हैं, तो उनको धर्मशास्त्र के हिसाब से और मेहनत करके पूरी करें ताकि उनसे छुटकारा मिल जाए। मान लीजिए किसी की इच्छा हुई कि हम सब कार खरीदें, उसने बेईमानी के पैसे से कार खरीदी तो कभी वो सफल नहीं हो सकता। इच्छा की पूर्ति नहीं हुई बल्कि बेईमानी का वो और आपके दिमाग में बैठ गया। और थर्डली कि हमेशा ये सोचता रहे कि दुनिया की सब चीजें दुनिया के सब लोगों से हमको छुटकारा पाना है और उनको छोड़ना है, तो उनसे उतने ही लगाव रखे जितनी आवश्यकता है। और जब तक ये ड्यूटी समझ के आप करते रहेंगे, देखिए हमारी पूजा में क्या बाधक होता है, जो चीज हमारे मन में विचार में किसी न किसी वक्त होती है वही सब चीजें, तीन ही तरह की चीजें जब आप अभ्यास को बैठते हैं तो खास बात नहीं, कुछ तो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। वो आए और छड़क मात्र में इनकी पहचान ये होती है कि नॉर्मली एक आध मरता आने के बाद वो फिर ख्याल में नहीं रहते। दूसरे इस जन्म की हमारी इच्छाएं संस्कार होते हैं जो बार बार ख्याल में आते हैं, तो जितना आपका ख्याल की धार उधर को जाएगी उतना ही वो बार बार आएंगे। इसीलिए अभ्यास ही कहता है कि सब पूजा में तबीयत नहीं लगती, खाली जरिया यह है कि अपने गुरु से इतना प्रेम बढ़ा ले कि उसके सामने दूसरी चीजें आपको ध्यान में ना आए, उन्हीं के कहने पर उन्हीं के हिसाब से और फिर किसी से कंप्रोमाइज ला कर। रिजल्ट भी इतना होना चाहिए, ये नहीं कि फलाने खुश हो जाएंगे तो ये कर दिया जाए, फलाने खुश हो जाएंगे फिर ये रिजल्ट होना चाहिए कि नहीं साहब हमको यही करना है। तो ये धीरे धीरे दुनिया छूटती जाती है। हमारा आपका लक्ष्य जो कि हमारे लाला जी महाराज साहब ने लिखा है वो यही लिखा है कि मोक्ष को प्राप्त करें, ना कि ये लिखा है कि हम सत्संगी हो जाएं, पूजा करें बगैर लक्ष्य के। जब तक प्राप्त नहीं होते तब तक कोशिश बराबर करनी चाहिए कि किस तरह से हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति वक्त के किसी जिंदा गुरु ही के साथ हो सकती है, जो आत्माएं गुजर गई हैं उनके उससे नहीं हो सकती। देखिए हम तीन तरह की चीजें होती हैं। एक हम तीर्थ स्थान पर गए तो क्या था कि जब से हमने ये इरादा किया कि हमें वहां जाना है तब से हमारे विचार ख्याल की धार उस तरफ को ज्यादा हुई। वहां पहुंचे, देखा। उसके बाद धीरे धीरे ख्याल की धार कम होती चली गई। अब कोई केदारनाथ गया है, कोई बद्रीनाथ गया है, तो जब तक नहीं गया ख्याल की धार ज्यादा थी, पर धीरे धीरे कम हो गई, अल्टीमेटली खत्म हो गई, क्योंकि वहां से उसको कोई वो नहीं मिला। दूसरे ये है कि हम लोग मंदिर पे गए, यही स्थिति वहां है। तीसरे नजारों पर हम लोग जाते हैं अपने बुजुर्गों के, वहां हमारा अपना ख्याल प्लस उनका आशीर्वाद। अगर आप सच्चे दिल से गए हैं तो आशीर्वाद जरूर मिलेगा। केदारनाथ किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता, आपके देवी किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकती। अगर आप सच्चे दिल से गए हैं तो वहां उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये पहली वाली से बेहतर चीज है। लेकिन क्योंकि वो शरीरधारी नहीं है, लिहाजा खाली आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। जिस वक्त आप जितना आदमी का सत्संग करते हैं और सच्चे उससे जाते हैं, आपका ख्याल होता है, उनका आशीर्वाद होता है, और उनके ख्याल का औरा जो होता है वो आप असर करते हैं। इसीलिए सत्संग की महिमा है कि हर किसी उसमें देख लीजिए, ये लिखा है कि बगैर सत्संग के, बगैर उसके आप किसी को प्राप्त नहीं कर सकते। खाली यही है कि जैसे अब हम लोगों ने पढ़ लिया, जो पिछली किताबें थी बड़ी मोटी मोटी पढ़ी, बस एक फाउंडेशन मिल गई, गाइडेंस किसने मिली, जो जिंदा टीचर ने पढ़ाया उससे हमें गाइडेंस मिल गई कि क्या चीज, तब वो चीज परमानेंट होती चली जाती है। वो चीज परमानेंट, और जब तक वो चीज परमानेंट आप पसंद नहीं करेगी, तब तक वो टेम्परेरी उस फेज में आप चलते रहेंगे। ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं है जो ईश्वर को ना मानता हो, वो तीर्थों में न जाता हो, लेकिन तब भी जहां थे बस ये कह सकते हैं कि उससे 19-20 हो गए, अच्छे इंसान बन पाए, मुकम्मल इंसान नहीं बन पाए। उसकी वजह यही है कि सत्संग की कमी रही, और बगैर सत्संग के किसी चीज का अचीवमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए हर युग में सत्संग की महिमा रही, कोई शख्स ऐसा नहीं था। भगवान राम अवतार थे, फिर भी ऋषि मुनियों का सबसे आशीर्वाद लेने चले। आशीर्वाद ही से ये रास्ता तय हो सकता है। हर एक से उनने ये कहा कि सब हम रावण को मारेंगे, उनने आशीर्वाद। उनके यहां रात में रोज सत्संग होता था। इस वक्त उनकी फौजें जमा होती थी तो हनुमान जी एक लाइन खींच देते थे कि ताकि इसका सर, ये इसलिए था कि उन्हें रावण को मारना था, रावण को सरेंडर नहीं करना। अहंकार को टेम्परेरी दबाना नहीं होता, वो तो जरा सा झटका लगता है आदमी को, रईस आदमी को झटका लगा, वो सोचता करीब कृष्ण साहब वो है, लेकिन ये दब जाता है, मरता नहीं है। लेकिन भगवान राम को अहंकार को परमानेंटली मारना था, इसलिए वो दूसरे, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, दिन भर राम राम रटने में, चाहे कोई भी काम कर सकता है, रट सकता है। नाम में वो ताकत होती है कि जो जाने के बाद भी मदद करती है। भगवान राम चले गए, उनका शरीर चला गया, लेकिन देखिए नाम आज तक चलता। तो काली एक नाम भी है, राम का नाम इसलिए चलता है कि नारद जी ने उनसे वर मांगा था कि सब सब कुछ हो, आप में हमारे आपके अनेकों नाम है, लेकिन सब नाम से ज्यादा प्रसिद्ध नाम हमेशा यही रहे, इसलिए राम का नाम चलता। कृष्ण भगवान ज्यादा शक्ति लेके पैदा हुए थे, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं है। कृष्ण भगवान का जगह जगह जी उस साइड में चले जाइए मिलेगा राधा कृष्ण, लेकिन राम में कैसे हैं जिसका दुनिया भर का नाम। ये उन्होंने अपने भक्तों को वचन दिया था जिसको उन्होंने पूरा किया। तो अगर ये कोई कहे कि साहब हम इतना भी नाम दिन भर नहीं रट रखते, तो उससे भाई ये है वो खाना पूरी करना चाहता है और थोड़ी देर के लिए हो सकता है तो उससे कुछ बेनिफिट हो गया हो, उससे उसकी श्रद्धा जाग गई हो। यहां दुनिया काम नहीं पूरे हुए, वो श्रद्धा धीरे धीरे खत्म होती चली जाती। तो कोशिश यही करिए कि जितना हो सब उतना नाम को बढ़ाते जाइए। इसीलिए बराबर कहते चले आ रहे हैं, जब तक सत्संग रेगुलर नहीं होगा, अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो इसके विरुद्ध हैं कि वहां भंडारा हो, जहां सत्संग रेगुलर हो वहीं। और आप देख लीजिए लाला जी महाराज साहब ने यही किया। वो किताब जी उनके बड़े प्रिय शिष्यों में से थे, किसी किताब में आप पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा कि साहब हम चाहते हैं वहां सत्संग हो भंडारा हो, उन्होंने कहा नहीं हम इससे सहमत नहीं है, वहां तुम हो और श्यामलाल है, ये चिट्ठी इसमें छपी हुई है, तुम दोनों चले जाते हो बराबर। मैं इसलिए जाता हूं और लोग आ नहीं सकते, वहां 10 आदमी बराबर सत्संग होता। यदि तुम भी किसी वक्त ऐसा कर लो कि 10 आदमी इकट्ठा करो उन्हें फायदा हो, तो मुझे आने में और पैसा खर्च करने में कोई वो नहीं। ये उनको लिखा है जिनको खुद बहुत मानते। रेगुलर जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक रूहानी फायदा नहीं हो सकता किसी को, उस आदमी में विश्वास नहीं आ सकता, उस आदमी में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इसीलिए बार बार लोग सत्संग का कहीं चले जाइए सत्संग का। दूसरा फर्क जरा सा ये है, एक तो गुरु नाम है, वो नाम दे देता है और आपसे कह देता है कि भाई ऐसे ही करते रहो, इसी तरह हम करते रहे। जैसे आज कल आपने देखा होगा आशाराम बापू हैं, ये हजारों को नाम दे दिए हैं और लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने गलत किया हो, सही किया है, लेकिन खाली एक नाम दे दिया और आपको बता दिया ये करते रहो। हमारे यहां ये करते हैं कि नाम के साथ साथ दीक्षा भी जब देती हैं तो अपने सब बुजुर्गों से उसकी आशीर्वाद तभी देगा जब किसी की जान पहचान हो। तो अपना वास्ता देके अपने सब बुजुर्गों से उसकी वो करा देते हैं जहां तक उसकी क्षमता होती है। और उसके बाद ये कहते हैं शिजरा पढ़ते रहो और कम से कम नीचे वाले बुजुर्गों को कुछ न कुछ करते रहो उनके, ताकि उन्हें आशीर्वाद दे। दूसरे लोग भी देते हैं, जैसे बाबूजी महाराज साहब ने लिखा है कि पलटू साहब बाबा फरीद। तो कहीं ना कहीं हम लोग के सिलसिले का कोई जरूर ऐसा होगा जो वहां से कनेक्टेड रहा होगा, तो उसके जरिए आशीर्वाद मिलता है। तो इसमें दोनों चीजें हमारी आ जाती है, हम लिविंग गुरु को देते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और सत्संग बराबर करते। जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी तब तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती और इसी को बढ़ाते चले जाइए, इसी को बढ़ाते चले जाइए। वक्त की कमी के हिसाब से अब मान लीजिए जैसे ताऊ जी ने हमसे कहा बेटे ये तीन लाइन की प्रार्थना कर लिया करो, फिर ये प्रार्थना सुबह और उसके बाद उनका विशाल हो जाता और हम उसी पड़े रहते कि साहब हमसे इतना ही वादा है इतना ही करेंगे, इससे और बेवकूफी की और कोई। फिर हमने बताया नहीं बेटे शिजराई पढ़ा करो, तो जब तक कि पूर्ण एक थर्ड के फोर्थ के बच्चे को अगर बीए की किताब दे दीजिए अपने आप चला जाएगा। लेकिन वो कहे नहीं साहब हमसे तो इतनी ही कहा है हम इतनी ही पढ़ेंगे, तो सिवा इलिटरेट रह जाएगा। हर वक्त जरिए किसी ने अलग अलग बताए, जरिए सबके किसी में आप देख लीजिए। जैसे हमसे गुरुदेव ने कहा था कि बेटे जो भी काम करो, खाना खाओ तो हमारे ख्याल में खाओ, खेलो तो हमारे ख्याल में खेलो, जिस काम को ख्याल करके जाओ तो ये कि तुम नहीं हम कर रहे हैं। बेसिक ठीक ये थी कि गुरु का ख्याल आपको हर वक्त बना रहे, गुरु की याद हर वक्त बनी रहे। और जब तक गुरु का ख्याल और गुरु की याद है और नाम है तब तक माया हमला कर नहीं करती। माया किसी को नहीं छोड़ती, टेस्ट सबका लेती है। लेकिन यह है कि जिनके साथ गुरु होता है, जिनके साथ गुरु की याद होती है और जिसके साथ नाम होता है, उनसे वो डरती रहती है। क्योंकि माया मायापति की पैदा हुई है, तो जहाँ मायापति है वहां वो जाके शांत बैठ जाती है। हर वक्त प्रार्थना करते रहिए। जितना दूसरों का भला कर पाए किसी फॉर्म में, जरूरी नहीं है कि किसी चीज में, हमेशा दूसरों की भलाई करिए, दूसरों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सब जिंदा रहते हैं। दूसरों का जितना कर पाए, क्योंकि ये सब चीजें यहां छूटेंगी, साथ जाएगी खाली आपके आपके अपने अमाल और ईश्वर का नाम, दूसरी चीज नहीं जा सकती। उन चीजों को इकट्ठा करिए जो चीजें आपके साथ हमेशा रहने वाली हैं, जो चीज छूटने वाली है। उन्हें अपने आप छोड़ते चले जाइए। जो चीजें स्थूल की बनी हुई है वो सब छूटेंगे, या कितने बड़ा मकान हो, कितने ही महल हो, कितने ही कपड़े हो, सब चीजें छूट जाएंगे। एक चीज जाती है वो खाली ईश्वर का नाम जाता है। तो उनको वैसे ही धीरे धीरे करके छोड़ते चले जाइए। जितनी जरूरत हो उतना रखिए, बचा हुआ छोड़ते जाइए। एक उसकी आदत पड़ जाएगी आपको इन चीजों से अलहदा रहने की, नहीं तो फिर दुनिया ही में हो रहेंगे। ये दुनिया छोड़नी है, दुनिया की चीजों को छोड़ना है, बस खाली ये कपड़े इष्ट को याद रखना है, उसी का ख्याल रखना है। और यही एक्चुअली अभ्यास है। अभ्यास का मतलब ये है कि हम इतना किसी चीज को रटते रहेंगे हमें याद हो जाए। हम लोग पढ़ते भी हैं तो उन्हें बार बार पढ़ो, तो पढ़ने का मतलब ही यही है कि यही असली अभ्यास है। जिस हाल में ईश्वर ने रखा है वो अच्छा है, उसने कुछ न कुछ समझा होगा कि सब ऐसा इनके साथ किया जाए। अब उसमें यही रोते रहे कि साहब हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े वो हैं, तो सब समय इसी का खराब होता चला जाए। सब उसका समझ के अपनी ड्यूटी समझ के वो करिए, किसी चीज से वो मत करिए। तब आप ये देखेंगे कि कितनी आप शक्तिमान हैं, कितनी चीजें, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो ना कर सकते हो। लेकिन हमारी ताकत जगह जगह बटी हुई है, जिसकी वजह से हम स्वयं कमजोर बने बैठे। हमने भगवान में खाली क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का फर्क नहीं है। तो जब भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। गुरुदेव यही कह सकते थे कि बेटे वो चीजें जो हो सकता है हम ना कर पाए वो तुम कर दो, समझे। वही सब गुण तुम में है, लेकिन यह है कि इनको डेवलप करना पड़ता है।